अब आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में ये बातें कहने की क्या जरूरत थी। तो याद रखिए कि सूरत के शुरू में ही ये बात आ जाती है कि अभी अखज करने की आदत नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी। आपको वही के आते ये फिक्र लग जाता था कि जिब्राइल जो बात सुना रहे हैं मुझे याद नहीं रहेगी। पहली वही पे भी तो वो कह रहे थे ना इकरा, तो आप क्या कह रहे थे, वमा अना बिकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला अब तरीका सिखा रहे हैं कि डोंट वरी, आप ऐसा ना करें, बस गौर से सुने। सबसे पहली बात यह है कि गौर से सुने, फिर उसके बाद हम आपको ये बात याद दिला देंगे और इसकी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और बीच में ये बात करना ऐसी जैसे अभी मैं आपको पढ़ाते हुए एकदम बीच में आपको किसी बात पे टोक दूं कि देखिए आप लिख नहीं रही, आप लिखिए, या आप जरा ऐसे बैठे, या आप ज्यादा झुके ना बैठे। तो ये बिल्कुल इधर यही अंदाज है कि बीच में जुमला मोतरजा के तौर पर ऐसी बात करके असल में अल्लाह के नबी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। खैर, कल्ला, हरगिज नहीं, यानी असल बात क्या है, ये जो आप सोच रहे हैं बातें लोग कह रहे हैं आपके बारे में, ये बात नहीं है, बल्कि ये वो बात है कि जिसको सीखने और समझने के लिए आपको इस बात की जरूरत है। और वो क्या कि आप इस कलाम को बेहतरीन तरीके से पेश करें। समझ किन को नहीं आता, अब देखिए ये जितनी बातें ना इसको एक ब्रैकेट्स में डाल लें, खत्म हो गई ये बात। कल्ला बल तो हिब्बून अल आजिला, नाउज बिल्ला, इसका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। गलत हो जाएगी तफसीर कि वही के अखस की बात है और साथ ही कह दिया बल्कि तुम जल्दी करते हो, तुम मोहब्बत करते हो जल्दी हासिल होने वाली चीज से। नहीं, इसका ताल्लुक वो ऊपर वाली चीजों से है। बात वाज़े, क़यामत के आने का इनकार करने की वजह इस दुनिया की मोहब्बत है, छोड़ना नहीं चाहते अपनी दुनिया। यहां देखिए दुनिया को क्या कहा, आजिला व तज़रून अल आखिरा, और छोड़ देते हो आखरत को। इस तरह से अल्लाह ताला ने इनकार आखरत की पहली वजह क्या थी, आयत 5 में इंसान चाहता मैं खुला फिरूं, मेरे पे कोई पाबंदी ना लगे, राइट। अब दूसरी वजह यह है कि उसको इस दुनिया से बड़ा प्यार है, वो कहते सब कुछ फौरन हो, नकद हो, कैश पे मामला हो, आखरत तो उधार है, किसने देखी, किसने की, किसने सुनी, हम इसको नहीं लेते। तो अल्लाह ताला रग़बत दिला रहे हैं कि देखो तुम आखरत से डरो नहीं, क़यामत का खौफ ज्यादा ना करो, क़यामत के दिन कुछ बड़े खूबसूरत मामले भी होने वाले हैं, जिसमें एक सबसे खूबसूरत मामला वुजूहुन यौमइज़िन नादिरा, कुछ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, फ्रेश, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, इला रब्बिहा नाज़िरा, क्योंकि वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। मोमिन मोहब्बत करता है अल्लाह से, और जिससे मोहब्बत होती है उसको देखना है, ऐसी है ना। तो अल्लाह को देखने के लिए मौत भी शर्त नहीं है, क़यामत शर्त है। समझ आई बात, यानी जिसको अल्लाह से मुलाकात का शौक है फिर उसको क़यामत तो नेमत लगेगी। देखिए दो ख्वाहिशें होती हैं मोमिन की, नंबर एक जन्नत में पहुंचो बनफ्से नफीस, और दूसरा अल्लाह का दीदार, ये दो क़यामत के बाद होंगे। तो अल्लाह कहते क़यामत मोमिनों के लिए तो तोहफा है, डोंट वरी, तुम अपने रब को देखोगे और उस वक्त खुश होगे, लेकिन कुछ बदबख्त बवजूह यौम इज़िम बासिरा, और कुछ चेहरे उस दिन उदास होंगे, बासी होंगे, शाइनलेस, फीके फीके होंगे, मरे मरे, बोझल, तकलीफ दे, क्योंकि दुनिया में उन्होंने ज़ाया कर दिया था। तज़ुन्नु युफ़ल बिहा फ़ाक़िरा, और समझ रहे होंगे कि इनके साथ कमर तोड़ बर्ताव होने वाला होगा। इन दोनों की वजाहत बाद में करेंगे, पहले तकाबुल कर लें। कुछ खुश, अल्लाह को देखा मुतमईन, सारी जिंदगी की मेहनतों का फल मिल गया, सब भूल गया, क्योंकि वाली रब्बी का फसबिर था, सब्र रब के लिए था, शिकवे नहीं थे, खत्म। लेकिन कुछ को लगेगा आज तो कमर ही टूट जाएगी, ये फाकिरा का जो लफ्ज है ना, फकर कमर के मोहरों को कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके अंदर डिस्क है, ये डिस्क है फाकिरा, फकर से, ये जो कहते हैं ना फकर, फकीरी, गुर्बत, वो भी कमर तोड़ महंगाई है, यानी गरीब की तो कमर ही टूट जाती है बेचारे की, वही है। खैर वापस आए, कल्ला, अब यहां से मौत का मंजर है। कभी किसी को बिस्तर पे देखा है ना मरते हुए, या फिर अपने आप को देख लें डेथ बेड पे क्या होता है। कल्ला इज़ा बलगत तराकी, हरगिज नहीं जब जान हलक तक पहुंच जाएगी। तराकी यहां से तरकबा कहते हैं, ये गर्दन का वो हिस्सा जिसको काटते हैं, जहां शारग होती है, कि जब जान हलक तक पहुंच जाएगी। वकील मन, और कहा जाएगा कोई है, अब सकता है इधर, उस वक्त आवाज भी नहीं निकल रही होती ना। अल्लाह कहते हैं जब जान निकल रही होती है तो पूछा जाता है मन राख है कोई झाड़ फूंक करने वाला, कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई सांस वापस लाने वाला बुलाओ। क्योंकि जब जान निकल रही होती है, 10 डॉक्टर भी पास हो ना तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। वजन नहुल फिराक, और इंसान उस वक्त समझ लेगा कि ये दुनिया से जुदाई का वक्त है। बीवी पास खड़ी है, बच्चे छोटे हैं, जवान बीवी है, मासूम बच्चे हैं, लग पता जाता है कि अब जुदाई का वक्त, अब छोड़ के जाऊंगा इनको। व तफत इस साक बिस साक, अब जान कैसे निकलती है, और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी। मौत के वक्त सबसे पहले टांगों से जान जाती है। कई लोगों की तो पहले कई ही दिन चली जाती है, बेजान होती है। मरता बंदा कब है, जब दिल और यहां से जान निकलती है। यहां तक भी बात तो मुर्दा हो चुका होता है इंसान का, जब पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी। इला रब्बी का यौम इज़ निल मसाब, अपने रब की तरफ आज रवानगी का वक्त है। अब तुम्हें अपने रब के पास जाना है। सोचिए, जाना तो है पर किस मुंह से गए? फला सद्दक वला सल्ला, ना सच माना ना नमाज पढ़ी। अपने आप से पूछिए, ना रब की बड़ाई की तस्दीक की ना नमाजें पढ़ी। वला किन कज़्ज़ब व तवल्ला, बल्कि झुटलाया और पलट ही गया। यानी सारी जिंदगी नो ही कहती रही, डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन, इस फाइल को डिक्लाइन कर दो, इस इनविटेशन को डिक्लाइन कर दो। कितनी इनविटेशंस आती है ना आपको नेट में, तो आप डिक्लाइन करते हैं। कज़्ज़ब, डिनाई किया, मैं नहीं मानती। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, फिर अकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चल दिया। औला लका फाउला, ये रविश तेरे लिए बहुत ही हलाकत वाली है, तुझे ही सूट करता है ये रवैया, वरना ठीक नहीं था। सुम्मा औला लका फाउला, और हाँ ये तरीका बस तुझे ही सूट करता है और किसी को नहीं। यानी अफसोस है, औला ऐसी है जैसे हम अफसोस के साथ कहते हैं कि तेरे साथ ये बुरा हुआ। अयसबुल इंसान युथरा का सुधा, क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि वो खुद ही शुतर बेमुहार छोड़ दिया जाएगा, मुंह उठा के जिधर मर्जी फिरे, कोई हिसाब नहीं, कोई पूछे ना। अरब लोग कहते थे इबिलुन सुदन, वो ऊंट जो यूं ही छूटा फिरे, जिधर चाहे चरे चुगे, कोई उसकी निगेबानी ना करे। उर्दू में हम इसको कहते हैं शुतर बेमुहार। शुतर भी ऊंट को ही कहते हैं। क्या इंसान खुद को शुतर बेमुहार समझना चाहता है कि अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, कोई काम नहीं दिया? अफ हसीब तो मन्ना मखलक ना को मबसा, सूरह मोमिनून 115 में पढ़ चुके। क्या तुमने ये सोचा कि तुमसे पूछा नहीं जाएगा इतनी नेमतें तुम्हें क्यों दी? जानवरों के दर्जे पे जीना चाहते हो? जरा अपनी असल पे तो गौर करो। अलम यक नुतफतम मिम्मनी ही युमना, क्या वो एक हकीर पानी का नुतफा ना था जिसे मादरे रहम में टपकाया गया? क्या थी हमारी औकात? सुम्म कान अलकतन फखलक फसव्वा, फिर वो एक लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने इसका जिस्म बना दिया। आप नोट करें, शुरू की वही में इंसान की तख्लीक का जिक्र बहुत है। वजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर इससे मर्द और औरत की दो किस्में बना दी। यानी जो एक पानी के कतरों को इतना हुसन देके दो मुख्तलिफ जिन्सों में बदल सकता है, तो बताओ अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि मरने वालों को फिर से जिंदा कर दे? पहले सवाल का जवाब आखिर में आ गया कि तुम कहते हो कि कैसे जिंदा किया जाएगा, हड्डियां गल गई। अल्लाह कहते हैं, बताओ इतना कुछ करने वाला क्या तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? बस रिवायत में आता है कि नबी सल्लम जब ये आखिरी आयतें पढ़ते थे कि जिसमें कहा गया कि कौन है जो अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, कि क्या वो इस पर कादिर नहीं कि मरने वालों को फिर से जिंदा कर दे? सवाल है ना, क्वेश्चनिंग है। तो अल्लाह के नबी इसके जवाब में कहते थे, भला क्यों नहीं? कभी कहते सुबहानक अल्लाहुम्मा फबला, पाक है तेरी जात ए अल्लाह, यानी कोई भी ऐसा नहीं है। इसी तरह सुबहानक फबला या सुबहानक वबला, दोनों अल्फाज आते थे। एक रिवायत अबू दाऊद में हजरत अबू हुरैरा से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम सूरत 3 में अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन पढ़ो, आखिरी आयत है, तो कहो बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, कहो क्यों नहीं मैं इस पर गवाही देने वालों में से हूँ। और जब सूरत क़यामा की आयत पढ़ो तो कहो बला क्यों नहीं। और आगे सूरह मुरसलात में हम पढ़ेंगे, फबियही हदीस इबादहु युमिनून, जब इसको पढ़ो तो कहो आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं। तो ये थी सूरत क़यामा, एक छोटी सी क़यामत की झलकी थी। अल्लाह ताला इस पे अमल की तौफीक दे। पूरी सूरत में क़यामत के अलावा कोई और बात नहीं हुई, ये खुलासा था। अब आप चंद लफ्ज़ बोलें फिर तिलावत सुनेंगे। जी इनका सवाल है कि जो गुनाह इंसान कर चुका है फिर माफ़ी भी मांग चुका है तो वो भी दिखाई जाएंगी। तो देखिए अल्लाह सुब्हान तआला मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ मामला करेंगे। बस जगह ये आता है कि अमूमन तो नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन किसी ऐसे इंसान को हो सकता है उसमें भी कोई हिकमत हो, उसने गुनाह छोड़े ना छोड़े क्या हुआ, उसको दिखाए तो जाएंगे, तो वो घबरा जाएगा, फिर वो कहेगा अल्लाह ताला तूने तो कहा था कि तौबा करोगे तो माफ़ है, तो ये क्यों है? तो कहते हैं कि एक झुरझुरी सी आएगी, तो जब दोबारा देखेगा तो वो सब नेकियों में बदल चुके हैं, तो कहा जाएगा कि इसलिए दिखाए गए कि अगर तू तौबा ना करता तो ये तेरा हिसाब किताब था। जी और कोई बात?
एक हदीस का मतलब मुझे लगता है कि उन लोगों के गुनाह छुपाए जाएंगे जो लोगों की बातें छुपाते थे दुनिया में ऊपर।
यानी जो दुनिया में किसी की ऐब पोशी करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसकी ऐब पोशी करेगा, बिल्कुल ऐसा होगा। ये तो हमारी आदतें जो यहाँ हैं वो वहां भी खुलेंगी।
एक माइंड सेट बन जाता है कि एक मजमून एक पूरी सूरत में चल रहा था, जो ब्रेक अगर होती है तो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे और
जी
जितना गौर और फिक्र होता है और रिफ्लेक्शन
यानी
होता
एक स्ट्रेच में सुनने से अल्लाह की बात ज्यादा समझ आती है।
है।
जी आप
ये सूरत पढ़ते हुए हमेशा इमेजिन करती हूँ कि कोई जब मर रहा होता है तो उसका क्या हाल होता है, और कैसे जान हलक में आके फंस जाती है, और उस वक्त आपके ऊपर कोई भी जोर नहीं होता, आपने और ना आपके इर्द गिर्द के लोगों का आपके ऊपर कोई जोर होता है, और ये चीज मुझे हमेशा बेहद इमोशनल करती है कि कभी हम तो ये वक्त
अपना सोचे, जब मेरी जान निकलेगी तो इसी तरह से होगा, इस तरह पिंडली खुलेगी फिर दूसरी होगी फिर मुझे इस तरह किया जाएगा, ये होगा वो होगा। जी
कहीं तो देखे कि बस बंदे बड़े सुकून से मर जाते हैं, उनको खत्म हो गई या फिर सामने वाला नहीं, हार्ट अटैक हो गई या कुछ भी, तो वो भी इस हफ्ते से नहीं गुजरते सारे।
जी बिल्कुल। आप देखिए कि मौत की सख्ती आना, पहली बात है ये गुनाहगार होने की अलामत नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो बहुत सख्ती आई थी। आपने फरमाया कि इन्ना लिल मौत ही लसकरा, मौत की तो बेहोशियां हैं ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला मोमिन का मामला यहाँ पाक कर देता है। मोमिन के ऊपर अगर कोई तकलीफें थोड़ी बहुत रह जाती हैं ना, तो अल्लाह ताला मौत की सख्तियों में इसको दूर कर देता है। इसके बरक्स काफिर के लिए मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का हो जाता है। ठीक है।
بسم الله الرحمن الرحيم
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك إلى ربك إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أي يترك سدى ألم يكن طفة ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر 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 على